ओम शांति। उड़ती कला का आधार उमंग उत्साह के पंख, हम सभी आत्माओं रूपी घोड़े इस आध्यात्मिक दौड़ में दौड़ रहे हैं। समय की रफ्तार बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। समय की रफ्तार के साथ साथ अपने स्थिति की रफ्तार भी आगे बढ़ती रहे, उसके लिए आवश्यक है सदा उड़ती कला में उड़ते रहने की। अगर हम उड़ती कला की अनुभूति नहीं करेंगे तो समय पर अपने संपूर्णता की मंजिल पर नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए समय की रफ्तार के साथ साथ स्थिति की रफ्तार संपन्नता की ओर आगे बढ़ती रहे, उसके लिए उड़ती कला का अनुभव के बिना कोई भी विकल्प नहीं है। तो सदा उड़ती कला में उड़ते रहने के लिए आवश्यक है स्वयं को उड़ता पंछी अनुभव करना। सबसे पहले ये मैं स्पष्ट करना चाहूंगा, उड़ती कला का अर्थ क्या है। उड़ती कला अर्थात एक सेकंड में इस देह रूपी डाल से या इस देह रूपी पिंजड़े से आत्मा रूपी पंछी उड़कर परम धाम में बाबा के पास बैठकर बाबा की याद में मगन हो जाएं, इसको कहते हैं उड़ती कला की अनुभूति करते रहना। अब इसके लिए आवश्यक है उड़ता पंछी बनना। उड़ता ओ अर्थात हमेशा उपराम रहना और ड अर्थात ज्ञान का डमरू बजाना, ज्ञान की मस्ती में सदा रहना, और त अर्थात हमेशा तत्पर रहने वाला, एवर रेडी रहने वाला, अपनी जीवन रूपी नैया के साथ अनेक आत्माओं की जीवन रूपी नैया को तारने वाला, पार लगाने वाला पंछी अर्थात मैंपन की जो छी छी आत्मा में है उसको जितना जितना हम मिटाते हैं उतना आत्मा पंछी बनकर उड़ती रहती है। उड़ते पंछी की चार विशेषताएं हैं। उन विशेषताओं को अगर हम धारण करते जाते हैं तो स्वयं को उड़ता पंछी सदा अनुभव करते जा सकते हैं। सबसे पहली बात, उड़ता पंछी के उमंग उत्साह के पंख बहुत मजबूत होते हैं। बाबा ने हमें ये दो पंख दिए हैं, ये दो पंख दिन प्रतिदिन मजबूत होते रहने चाहिए। जितने ये पंख मजबूत होते हैं उतनी हम ऊंची उड़ान भर सकते हैं। तो ये दोनों पंखों को मजबूत करने के लिए हमेशा खुशी में मस्त रहना है। बाबा कहते हैं खुशी जैसी कोई खुराक नहीं है, खुशी जैसा कोई खजाना नहीं है। तो हमेशा खुशी में सदा मस्त रहने के लिए पहली बात, सदा सम्मान के सिंहासन पर बैठे रहें। जब आत्मा राजा सम्मान के सिंहासन पर बैठता है तो मन बुद्धि कर्मेंद्रिया जो होती है उन पर नियंत्रण करता है, अनुशासन करता है और खुशी में झूमता रहता है। तो हमेशा सम्मान के सिंहासन पर डटे रहें। परिस्थिति कैसे भी आवे, बात कैसे भी आए, हमने ये सिंहासन सम्मान का नहीं छोड़ना है। माया बहुत अपोजिशन करती है हमें इस पोजिशन से हटाने के लिए, लेकिन हमें इस पोजिशन को छोड़ना नहीं है। दूसरी बात, सदा खुशी में रहने के लिए अपने भाग्य के गीत सदा गाते रहें। सारे संसार को भाग्य बांटने वाला भाग्य विधाता हम सभी आत्माओं के भाग्य के गीत हर रोज मुरली में गाते रहते हैं। कितने हम भाग्यशाली आत्माएं हैं बात मत पूछो। सारे संसार को भाग्य बांटने वाला मेरा बाप बन चुका है, चाहे मैं जितना भाग्य लूटना चाहे लूट सकता हूं और लुटा सकता हूं। सारे कल्प में हमें ये मौका एक ही बार मिलता है, इसलिए एक बार जोर से तालियां बजाएंगे सारे संसार जिसके गीत गाता है वो हमारे महिमा के गीत गा रहे हैं। हर रोज हम सभी आत्माओं पर महिमाओं के फूलों की वर्षा करते हैं। कितने भाग्यशाली हम हैं। तो इसलिए सदा भाग्य के गीत गाते रहें और खुशी में सदा झूमते रहें। दूसरी विशेषता, उड़ता पंछी हमेशा सदा हल्का रहता है इसलिए वो उड़ता रहता है। रिंचक मात्र भी अगर उस पर बोझ होता है तो वो उड़ नहीं सकता है। इसलिए सदा हल्का रखने के लिए हमें अपना जो भी जिम्मेदारी का बोझ है, चाहे लौकिक चाहे अलौकिक, हमें बाबा के कंधे पर रखना है और स्वयं को एकदम लाइट हल्का अनुभव करना है। तो जिम्मेदारी का बोझ बाबा को सदा देते रहें, स्वयं को हमेशा निमित्त और ट्रस्टी बनकर अनुभव करते रहें, जिम्मेदारी को निभाते रहें। और ड्रामा में ऐसी कोई अनहोनी बात आती है तो हमें वो बोझिल बनाती है, तो उसके लिए सदा हल्के रहने के लिए नथिंग न्यू का पाठ हमें पक्का करना है। जो भी दर्श हमारे सामने आ रहा है, हमारे सामने से गुजर रहा है, वो दर्श नया नहीं है, केवल वो रिपीटेशन है। और नथिंग न्यू का पाठ करते रहने से हमेशा हम सदा हल्के रहते हैं। इसलिए संगम युग में सदा हल्के रहना ये श्रेष्ठ भाग्य की निशानी है, क्योंकि जो आत्माएं हल्की रहती है वो उड़ती कला में उड़ती रहती हैं और भाग्य विधाता से भाग्य लूटती रहती हैं और अपने भाग्य का सितारा चमकाती रहती हैं। तीसरी विशेषता है उड़ते पंछी की, तीसरी विशेषता है उड़ता पंछी कभी भी साइड सीन देखता नहीं है। जब हम कोई भी साइड सीन देखते हैं तो हमारी उड़ने की जो स्पीड है, रफ्तार है, वो धीमी हो जाती है। इसलिए साइड सीन देखना अर्थात दुनिया की समाचार की बातों में, लेन देन में दिलचस्पी रखना, बाबा ने हमें पहले से ही बताया है कि दुनिया में क्या हो रहा है और क्या होने वाला है। तो इसलिए परदोष दर्शन, पर चिंतन, इधर उधर की बातों को न देखते हुए हमें अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहना है। अगर देखना भी है तो ब्रह्मा बाबा को रोल मॉडल के रूप में हमें देखना है और सदा उड़ती कला में उड़ते रहना है। और चौथी विशेषता है उड़ता पंछी के एक आंख में मुक्ति और दूसरे आंख में जीवन मुक्ति सदा समाई रहती है। मुक्ति अर्थात हमें परम धाम रूपी घर जाना है, जीवन मुक्ति अर्थात इस संगम योगी जीवन में रहते हुए हमें मुक्त अनुभव करना है, बंधनों से न्यारा अनुभव करना है। कोई भी बंधन हमें बांधे नहीं, ऐसा स्वयं को स्वतंत्र पंछी, आजाद पंछी, उड़ता पंछी अनुभव करना, इसको कहते हैं जीवन मुक्त स्थिति की अनुभूति करना। तो इन चार विशेषताओं को जितना जितना हम अपनाते जाते हैं उतना उतना हम उड़ता पंछी बनते जाते हैं और उड़ती कला में सदा उड़ते रहते हैं। अभी बाबा का इशारा है उड़ती कला में उड़ते रहने के लिए, बाबा ने इस समय को ही वरदान दिया है कि ये समय उड़ती कला में उड़ने का है। अगर इस समय उड़ती कला की अनुभूति नहीं हम करेंगे तो पहला नुकसान हमें ये हो सकता है, ना होगी उड़ती कला तो माया पकड़ेगी हमारा गला, क्योंकि ये माया की दुनिया है, ये हमारा राज नहीं है, ये पराया राज है। इसमें सदा अगर हम रहेंगे, लिप्त रहेंगे, उड़ती कला की अनुभूति नहीं करेंगे तो माया हम पर वार करेगी, हमें अपना शिकार बनाएगी, उसके कारण हम उड़ती कला अनुभव नहीं कर सकेंगे। इसलिए दुश्मन से चौकन्ना हमें रहना है, क्योंकि बाबा ने हमें बड़ा कठिन काम दिया है, रहो दुश्मन के राज में, प्रॉपर्टी विकारों के अंश वंश दुश्मन की प्रॉपर्टी साथ में, और कार्य क्या दिया है, नई दुनिया की स्थापना आपको करनी है। कार्य थोड़ा कठिन जरूर है, लेकिन माया से अगर हम हमेशा अलर्ट रहेंगे, सावधान रहेंगे और उड़ती कला की अनुभूति करेंगे तो हमें माया नुकसान नहीं पहुंचा सकती है। दूसरी बात, उड़ती कला तेरे बहाने कमियां मैं छोड़ता चला। उड़ती कला में उड़ते रहने के लिए जो भी आत्मा में कमियां हैं, वो कमियों को हमें छोड़ते रहना है। एक बात हमेशा याद रखना है, कमी हमें कमाई करने नहीं देती है। चाहे खुद की कमी, चाहे दूसरों की कमी अगर हम देखते हैं तो भी कमाई हमारी नहीं होती है। खुद की कमी होगी तो वो पुरुषार्थ में बाधा डालेगी, और दूसरों की कमी अगर हम देखते हैं तो उसका चिंतन हमारे मन में चलता रहेगा, उसके कारण बाबा की याद नहीं होगी और उड़ती कला की अनुभूति हम नहीं करते रहेंगे। इसलिए कल्याण इसी बात में है, जो भी कमियां हैं, त्रुटियां हैं, खामियां हैं, उनको महसूस करना है, रियलाइज करना है और उनको निकाल कर उनसे स्वयं को फ्री अनुभव करना बहुत जरूरी है। तीसरी बात, उड़ती कला तेरे बहाने सर्व के प्रति शुभ सोचता चला। उड़ती कला के कारण सर्व के प्रति शुभ सोचते रहना बहुत जरूरी है। अगर किसी के प्रति हमारे मन में ईर्ष्या द्वेष की भावना, निगेटिव भावना होती है तो वो हमें नीचे ले आती है। इसलिए हमें किसी भी आत्मा के प्रति अशुभ भावना नहीं रखनी है। शुभ भावना का चश्मा हमें पहनना है और हर आत्मा के प्रति शुभ भावना ही रखनी है। हमेशा ये सोचना है कि ये मेरा बेहद का परिवार है, सब आगे बढ़ते रहें, सबकी उन्नति होती रहे, सब फलते रहे, फूलते रहे, तो ऐसी शुभ भावना हमारे मन में सदा पनपती रहेगी तो उड़ती कला की अनुभूति सदा होती रहेगी। इसलिए बड़ा दिल हमें रखना है, किसी से छोटी मोटी गलती भी होती है तो क्षमा भाव रखना है और उस आत्मा के प्रति भी हमें शुभ भावना सदा रखना है। बड़े व्यक्ति की निशानी है बड़ा दिल रखना और सबके प्रति शुभ भावना और शुभ कामना रखते जाना, और ये संपूर्ण पवित्रता की निशानी है। चौथी बात, उड़ती कला तेरे बहाने मिला मुझे अतीन्द्रिय सुख का झूला। उड़ती कला के बहाने हमें अतीन्द्रिय सुख का झूला मिला है, क्योंकि उड़ता पंछी उड़ता रहता है, तीनों लोगों की सैर करता है। जो बड़े लोग होते हैं वो हमेशा सैर करते रहते हैं और जीवन का भरपूर आनंद लेते रहते हैं और अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते रहते हैं। हम बाबा के बहुत बड़े लाल हैं, बहुत भाग्यशाली बच्चे हैं, तो बाबा ने हमें झूले दिए हैं झूलने के लिए। बाबा कहते हैं बुद्धि रूपी पैर कभी भी मिट्टी में आपको नहीं रखना है, हमेशा झूले में झूलते रहना है और तीन इंद्रिय सुख के झूले में हमेशा झूलते रहना है। तो उड़ती कला के कारण हमें बाबा ने ये अति इंद्रिय सुख का झूला भी दिया है। अभी हमेशा उड़ती कला की अनुभूति करते रहने के लिए हमें सात बातों पर विशेष अभ्यास करना जरूरी है। अगर इन पांच सात बातों पर ध्यान देंगे, अभ्यास करेंगे, तो सदा उड़ती कला में उड़ते ही रहेंगे, ये गारंटी है। पहली बात, सदा उड़ती कला में उड़ते रहने के लिए आवश्यकता है पवित्रता के शक्ति को बढ़ाते रहने की, क्योंकि रॉकेट को जैसे किसी उपग्रह पर भेजते हैं या रॉकेट जब ऊंची उड़ान उड़ता है तो उस रॉकेट का ईंधन होता है बहुत एक्स्ट्रा रिफाइन पेट्रोल, अल्ट्रा रिफाइन पेट्रोल, उसको कहते हैं एविएशन टर्बाइन फ्यूल। तो ऐसे ही आत्मा रूपी रॉकेट सदा उड़ता रहे तो उसका ईंधन है पवित्रता की शक्ति। तो जितनी जितनी पवित्रता हमारी रिफाइन होती जाती है, पवित्रता रूपी पेट्रोल रिफाइन होती है, तो आत्मा रूपी रॉकेट बहुत तेजी से सदा उड़ता रहता है और उड़ती कला की अनुभूति का हम भरपूर आनंद लेते रहते हैं। लेकिन उसके लिए हमेशा एक बात पर हमें अभ्यास करना है, भाई भाई आत्मा आत्मा की दृष्टि सदा पक्की करना। भाई बहन की दृष्टि से भी ऊपर हमें दृष्टि ले जाना है। हम सभी आत्माएं भाई भाई हैं और एक शिव पिता की संतान हैं। ऐसे अभ्यास से कभी भी अपवित्रता हमारे पास आ नहीं सकती है और पवित्रता की शक्ति सदा वृद्धि को पाती जाती है और उड़ती कला की अनुभूति हम करते जाते हैं। दूसरी बात, सदा उड़ती कला में उड़ते रहने के लिए हमेशा समझें कि मैं आत्मा रूपी हीरो एक्टर इस पुरानी दुनिया के गेस्ट हाउस में विराजमान हूँ। ये पुरानी दुनिया गेस्ट हाउस है। गेस्ट हाउस कितना भी बढ़िया हो, सोने के दरवाजे हो, खिड़कियां हो चमचमाते हुए, अलमारियां हो, कितना भी बढ़िया गेस्ट हाउस है, फिर भी आपको उसमें चैन की नींद नहीं आएगी। आखिर तो ये गेस्ट हाउस ही है। तो वहां रहते हुए आपको अपना घर रेस्ट हाउस बार बार याद आता रहेगा, चैन की नींद आपको अपने घर में ही आएगी। तो इस पुरानी दुनिया को गेस्ट हाउस समझने से हमें अपना रेस्ट हाउस जो परमधाम है उसकी सदा स्मृति रहती जाएगी और उसके कारण उड़ती कला की अनुभूति हमें सहज अनुभव होती जाएगी। तो हम इस बेहद के रंग मंच पर हीरो पार्टधारी हैं और जो हीरो होते हैं वो किसी को नहीं देखते हैं, सभी उसको देखते हैं। तो ऐसा हीरो पार्टधारी समझने से सदा हम एक अलौकिक मस्ती में रहते हैं और दुनिया को गेस्ट हाउस समझकर अपने रेस्ट हाउस की स्मृति में सदा मस्त रहते हैं। तो हम सभी हीरो हैं, ऑर्डिनरी एक्टर नहीं हैं, करोड़ों में भगवान ने सिलेक्ट किया हुआ है, करोड़ों आत्माओं को अनदेखा किया है और आप पर उसकी नजर पड़ी है। कितनी महान आप हीरो आत्माएं हैं भाई, तालियां तो बजनी है। करोड़ों आत्माओं में से भगवान की नजर आप पर पड़ी है, कोई बात साधारण नहीं है। हजारों में लाखों में सिलेक्शन नहीं किया है, करोड़ों में सिलेक्शन भगवान ने किया हुआ है। इसलिए हम भले साधारण वर्तमान समय हैं, लेकिन बहुत हीरो पहाड़धारी ऊंचे पहाड़धारी हम सभी आत्माएं हैं, तो अपनी मस्ती में मस्त रहना है। तीसरी बात, सदा उड़ती कला में उड़ते रहने के लिए याद रखना है तीन ड्रेसेस बाबा ने हमको दिए हैं। हम बहुत रॉयल बच्चे हैं, रॉयल लोग होते हैं वो बहुत ड्रेस चेंज करते रहते हैं, बताते रहते हैं हम बहुत रॉयल है। उनका सोने का ड्रेस अलग, घर का ड्रेस पहनने का अलग, ऑफिस का बिजनेस का ड्रेस अलग, तो घूमने का ड्रेस अलग, जिम्स में जाने का ड्रेस अलग। तो कहते हम बहुत बड़े हैं, भाई हम छोटे हैं क्या? हम भी तो बड़े बाप के बड़े बच्चे हैं, तो हमें भी बाबा ने बहुत अच्छे अच्छे ड्रेसेस दिए हैं। तीन ड्रेसेस दिए हैं, ब्राह्मण स्वरूप की ड्रेस, फरिश्ता स्वरूप की ड्रेस और देवता स्वरूप की ड्रेस। तो इन तीनों ड्रेसेस को केवल हमें बुद्धि रूपी अलमारी में नहीं रखना है। माताओं से अगर आप हम पूछते हैं कि आपके पास बहुत सुंदर ड्रेसेस हैं, वो ड्रेसेस अलमारी में रख कर देखने से आपको खुशी जास्ती होगी या पहनने से खुशी जास्ती होगी? बोलिए भाई, पहनने से होगी। तो ऐसे आत्माओं रूपी सजनियों को हमारा जो सलोना शिव साजन है उसने ये तीन ड्रेसेस दिए हैं, तो इसलिए इन तीनों ड्रेसेस को आत्मा को बार बार पहनाते रहें, जिससे क्या होगा, रॉयल संस्कार धारण होते जाएंगे। ब्राह्मण जीवन रॉयल जीवन है, देवताई जीवन हमारा दिव्य गुणों से भरपूर जीवन है, बहुत रॉयल जीवन है। तो रॉयल फरिश्ता, ये रॉयल जीवन हमारा है, रॉयल्टी बढ़ती जाती है, उसके कारण बहुत अच्छी तरह से हम उड़ती कला की अनुभूति करते रहते हैं। क्योंकि देह रूपी ड्रेस या देह का भान हमें नीचे लाता है। इसलिए एक स्लोगन हमेशा याद रखना, हमेशा जितना रहेंगे देह से न्यारा उतना चमकेगा भाग्य का सितारा। जितना रहेंगे देह से न्यारा उतना चमकेगा भाग्य का सितारा। बस इस स्लोगन को याद करेंगे और इसका स्वरूप बनेंगे तो आप सदा उड़ते कला में सदा उड़ते ही रहेंगे। आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो नीचे लाए। चौथी बात, सदा उड़ती कला में उड़ते रहने के लिए वाय और वाट को परिवर्तन करते चले। आजकल दुनिया में लोग वाय और वाट ये दो शब्दों का बहुत प्रयोग करते हैं। हर बात में वाय 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 करके क्राय करते रहते हैं। कारण कारण क्या कारण है, ऐसा क्यों हुआ, उसके पीछे लगे रहते हैं। तो वाय को हमें फ्लाई में अनुभव करना है, बाबा ने भी कहा है। फ्लाई माना हमेशा फ्लाई करते रहना है, उड़ते रहना है। और वाट को वाइट में परिवर्तन करना है। वाइट ये पवित्रता का सूचक हैं, वाइट ये फरिश्ता स्थिति का सूचक है, शांति का सूचक है। इसलिए हमें वाट को वाइट में परिवर्तन करते जाना है। और बाबा ने भी कहा है, कारण शब्द मुझे सौगात में दे दो, कारण मुझे देंगे तो आप हमेशा निवारण स्वरूप रहेंगे और सदा उड़ती कला में उड़ते रहेंगे। इसलिए बहुत अच्छी तरह से इन दोनों शब्दों का प्रयोग हमें परिवर्तन करके यूज करते जाना है। चौथी बात, कितनी, पांचवी बात, सदा उड़ती कला में उड़ते रहने के लिए दुआओं का खजाना हमें बढ़ाते रहना है। आप देखना संगम युग सीजन है, दुआओं को जमा करने के सीजन, आम की सीजन आती है, अंगूर की सीजन आती है, तो सारे क्लब में संगम युग है, दुआओं को जमा करने की सीजन। इसलिए इस सीजन में हमने बहुत दुआएं जमा करना है, क्योंकि जितना दुआओं का स्टॉक हमारे पास बढ़ता जाता है उससे एक अजीब सी खुशी होती है और एक अजीब सी मस्ती चढ़ती है, वो हमें प्रसाद में चार चांद लगा देती है। उड़ती कला में सदा हम उड़ते रहते हैं। इसलिए सेवा के जो भी साधन बाबा ने हमें दिए हैं, तन मन धन मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क, जो भी साधन हमें दिए हैं, उन साधनों का बहुत प्रयोग अच्छी तरह से करना है और दुआओं का स्टॉक खजाना जमा करते जाना है। तो आप देखेंगे संगम युग में जो आत्माएं दुआओं के खजाने से भरपूर रहते हैं, उनका भविष्य वर्तमान भी उज्जवल रहता है और भविष्य में भी उज्जवल रहेगा, ये निश्चित है। क्योंकि हम जब शरीर छोड़ते हैं तो हमारे साथ केवल दुआओं का खजाना चलता है, उसको दूसरे शब्दों में पुण्य कर्म भी कहते हैं। इसलिए दुआओं का खजाना बढ़ते जाए, दुआ लेना दुआ देना, बस इसी बिजनेस में हम सदा बिजी रहना है तो सदा उड़ती कला में उड़ते रहेंगे। छठवीं बात है, सदा उड़ती कला में उड़ते रहने के लिए एक बात हमें ध्यान रखना है, बाबा मेरा संसार है, इस अनुभूति को बहुत अच्छी तरह से बढ़ाना है। संसार में रहते हुए बाबा मेरा संसार है, इसलिए हमें कमल आसनधारी बनकर सदा बैठना है, मन और बुद्धि कर्म करते हुए भी न्यारी और प्यारी अनुभव होती रहे। तो कमल आसनधारी बनने से इस संसार से हम न्यारे रहते हैं और बाबा ही हमारा संसार अनुभव करते हैं, क्योंकि संसार में केवल दो ही चीजें हैं, व्यक्ति और वैभव, तीसरी चीज नहीं है। तो जो प्राप्तियां हमें व्यक्ति और वैभव से होती है, वो प्राप्तियां अगर हम बाबा से करते हैं तो बाबा हमारा संसार अनुभव होता है। जब संसार अनुभव करते हैं तो बाबा उपराम है, परम धाम है, ऊपर वाला राम परम धाम में रहता है, तो ऑटोमेटिक उड़ती कला की अनुभूति हम करते रहेंगे। इसलिए हमेशा बाबा को अपना संसार अनुभव करते रहें। और सातवीं बात है, उड़ती कला की अनुभूति करने के लिए संगम युग के समय को कभी भी न भूलें। हम संगम युग पर बैठे हैं, ये भाग्य बनाने की वेला है, श्रेष्ठ कर्मों का बीज बोने की ये वेला है। ऐसी स्मृति रहेगी तो आलस और अलबेलापन आपके पास नहीं फटकेगा, और जब आलस अलबेलापन नहीं होगा तो उमंग उत्साह में आप उड़ते रहेंगे और बहुत अच्छी तरह से उड़ती कला का अनुभव करते जाएंगे, क्योंकि उड़ती कला का अनुभव बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे जीवन में है। अंतिम पेपर में पास विथ ऑनर होना है, अंतिम पेपर में पास विथ ऑनर होना है, तो उड़ती कला में जो उड़ते रहते हैं उनको बहुत अच्छी तरह से इसमें सफलता मिलेगी। परिस्थिति कैसे भी है, हमें एक सेकंड में देह से न्यारा होना है और उसी सेकंड बाबा का प्यारा अर्थात बाबा की स्मृति में रहना है। ऐसा अभ्यास करेंगे तो बहुत अच्छी तरह से अंतिम पेपर में भी हम पास विद ऑनर हो सकेंगे। इसलिए इन सभी बातों को हमें बहुत अच्छी तरह से जीवन में लाना है और उड़ती कला में उड़ते रहने का भरपूर प्रयास करना है, क्योंकि अभी चलने का समय नहीं है, दौड़ने का समय नहीं है, हाई जंप का भी समय नहीं है, उड़ने का समय है। अब उड़ने के समय में अगर हम चलते रहेंगे तो मंजिल पर हम नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए हमेशा मुझ आत्मा को, आत्मा रूपी पंछी को उड़ती कला में उड़ते रहना है, इसी मस्ती में सदा मस्त रहना है। तो अभी हम चंद घड़ियों के लिए उड़ती कला में उड़ने का अनुभव करेंगे, तो इसलिए सभी थोड़ा सा जोरदार तालियां बजाएंगे और उसके बाद अच्छी तरह से अभ्यास करेंगे। ठंडी का समय है, सुस्ती का भी समय है, इसलिए 15 मिनट पावरफुल योग का अभ्यास हम करने जा रहे हैं। सभी थोड़ा चुस्त और मस्त होके बैठेंगे, अलर्ट एकदम, सुस्त राम नहीं, एकदम अलर्ट। ओम शांति। इस देह रूपी चैतन्य पिंजरे में मैं निराकार ज्योति बिंदु आत्मा रूपी पंछी भ्रुकुटी के मध्य विराजमान हूँ। मुझ आत्मा रूपी पंछी के उमंग उत्साह के पंख बहुत मजबूत हैं, शक्तिशाली हैं। मैं आत्मा रूपी पंछी शक्ति स्वरूप हूँ। पवित्र स्वरूप हूँ। मैं आत्मा रूपी चैतन्य उड़ता पंछी इस देह रूपी पिंजड़े से न्यारा होकर बुद्धि रूपी विमान में बैठकर तीनों लोगों की सैर करने निकला हूँ। मैं उड़ता हुआ पंछी उड़ रहा हूँ। इस देह रूपी पिंजरे से न्यारा होकर विश्व के गोले से पार चंद्र सूर्य तारा गण से भी पार उड़ता हुआ जा रहा हूँ ओहो मैं आत्मा उड़ता पंछी फरिश्तों की दुनिया में निराली दुनिया में पहुंच चुका हूँ जहाँ चारों ओर सफेद सफेद दिव्य प्रकाश प्रकाश है। पवित्रता ही पवित्रता है। मोज आत्मा पंछी ने बहुत सुंदर फरिश्ता स्वरूप की दिव्य प्रकाश पुंज की चमकीली ड्रेस धारण कर ली है। कितनी सुंदर हल्की फुल्की ड्रेस है। ओहो इस जनवरी मास में विशेष पालना देने के लिए फरिश्तों के बादशाह प्यारे ब्रह्मा बाबा अपने संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप में मेरे समक्ष विराजमान है। मेरे अति प्यारे अति मीठे शिव बाबुल भी उनके ब्रुकुटी में चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं। बाप दादा मोज फरिश्ते को नजर से निहार कर रहे हैं। मुझे पर्सनली शक्तिशाली दृष्टि दे रहे मैं फरिश्ता बाबा की दृष्टि का आनंद ले रहा हूँ। बाबा की दृष्टि से असीम प्यार और अनंत शक्तियाँ ग्रहण कर रहा हूँ। बाबा की दृष्टि का आनंद लेते लेते मैं फरिश्ता बाबा की बाहों में समा चुका हूँ। परम सुख की अनुभूति हो रही है। बाबा के नैनों में स्नेह के मोती चमक रहे हैं। सुखिल देव बच्चे मैं बेहद खुश हूँ। मैंने अपना खोया हुआ लाल
5000 वर्षों बाद पाया है, मैं बेहद खुश हूं। प्यारे बच्चे, इस फरिश्तों की दुनिया में सदा आपका स्वागत है। जब चाहो जिस भी संबंध की अनुभूति मुझसे करना चाहो करते रहो, उड़ती कला में उड़ते रहो। सचमुच मैं आत्मा पंछी कितना न खुश नसीब हूं, डायरेक्ट भगवान के साथ विभिन्न संबंधों की अनुभूति करते हुए परमात्म प्यार से स्वयं को भरपूर कर रहा हूं। फरिश्ता स्वरूप की चमकीली ड्रेस को छोड़कर मैं निराकार ज्योति बिंदु आत्मा पंछी पुनः बुद्धि रूपी पुष्पक विमान में बैठकर उड़ता हुआ निराकारी दुनिया की ओर जा रहा हूँ, जा रहा हूँ। ओहो, मैं उड़ता पंछी निराकारी दुनिया में पहुंच चुका हूँ, जहाँ चारों सुनहरी लाल हिला दिव्य प्रकाश प्रकाश है, शांति ही शांति। कितना प्यारा रेस्ट हाउस है यह मेरा परम धाम। ओहो, मेरे प्राणों के प्राण सत्यम शिवम सुंदरम प्यारे शिव पिता मुझ आत्म पंछी के समक्ष विराजमान है। मैं आत्म पंछी बाबा की सुंदर छवि को दिव्य चक्षु से निहार रहा हूँ, बाबा की सुंदरता का आनंद ले रहा हूँ। बाबा मेरे नैनों के नूर बन चुके हैं, मेरे उड़ता पंछी के नैनों में बाबा बच चुके हैं। बाबा ज्ञान सूर्य हैं, आध्यात्मिक शक्तियों के अथाह सागर हैं, प्रचंड स्रोत है। इस साकारी दुनिया के सूर्य से हजारों गुना शक्तिशाली है। शक्तियों के सागर ज्ञान सूर्य शिव पिता से अत्यंत शक्तिशाली किरणों की बरसात मुझ आत्म पंछी पर हो रही है, होती ही जा। मैं आत्मा पंछी ज्ञान सूर्य शिव पिता से प्रचंड शक्तियां, अनंत शक्तियां, असीम शक्तियां, अद्भुत शक्तियां स्वयं में ग्रहण कर रहा हूँ। योग की प्रखर अग्नि में मेरे पूर्व जन्मों के पाप पल भर में भस्म हो रहे हैं। मैं आत्म पंछी स्वयं को एकदम लाइट और खुशी से भरपूर अनुभव कर रहा हूँ। इतने विशाल परम धाम में मैं आत्म पंछी उड़ता पंछी बनाने वाले शिव पिता के साथ महामिलन मंगल मिलन का आनंद ले रहा हूँ। बाबा की याद में खो चुका हूँ, बाबा ही मेरे संसार बन चुके हैं। मेरे दिल की दुनिया में केवल एक दिलाराम बाबा ही बाबा है, अस बाबा ही बाबा है। मैं आत्म पंछी सूरजमुखी बनकर ज्ञान सूर्य शिव पिता को संपूर्ण एकाग्रता के साथ देख रहा हूँ। ज्ञान सूर्य की तपत में तप रहा हूँ, तपो बल जमा कर रहा हूँ। असीम शक्तियाँ स्वयं में ग्रहण कर रहा हूँ। ज्ञान सूर्य शिव पिता से शक्तियों की किरणें मौज आत्म पंछी पर पड़ रही है और मेरे द्वारा शक्तियों की किरणें सारे विश्व के ग्लोब पर आत्माओं रूपी चैतन्य सितारों पर पड़ रही है, पड़ती ही जा रही है। कितनी सुंदर अनुभूति है यह उड़ती कला में उड़ने की। मैं उड़ता पंछी बाबा की याद में मस्त हूँ, खोया हुआ हूँ, डूब चुका हूँ, लीन हो चुका हूँ। बाबा ही बाबा मुझे नजर आ रहे हैं। शक्तियों से भरपूर आत्मा पंछी पुनः बुद्धि रूपी विमान में बैठकर निराकारी दुनिया से वापी वाया सूक्ष्म वतन साकारी दुनिया की ओर आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। और पुनः इस शरीर रूपी चैतन्य कुटिया में पिंजड़े में विराजमान हो चुका हूँ। मौज शक्तिशाली आत्म पंछी से शक्तियों की सजीव तरंगे चारों ओर फैल रही है। वायुमंडल को प्रकंपित करके शक्तिशाली बना रही है। जैसे मेरे शिव पिता निराकार ज्योति बिंदु है, वैसे मैं आत्मा उनकी संतान भी निराकार ज्योति बिंदु हूँ, निराकार ज्योति बिंदु हूँ। ओम शांति शांति शांति।